सफर इस वक्त किस मरहले पर है, लीजिए आपको कुछ देर के लिए ले चलें लाहौर पाकिस्तान में कायम रुखसाना फाउंडेशन के इस स्कूल में। जी ये थी झलक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में रुखसाना फाउंडेशन के उस स्कूल की सरगर्मियों की जिसके रूहे रवा रुखसाना मुश्ताक और उनके कार्डियोलॉजिस्ट बेटे डॉक्टर नईम ताहिर खेली आज मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम के। रुखसाना मुश्ताक मौजूद हैं लाहौर पाकिस्तान से और डॉक्टर नईम ताहिर खेली ओक्लाहोमा अमरीका से टेलीफोन पर हमारे साथ हैं और उनके साथ साथ हमने मेहमान बनाया है रुखसाना फाउंडेशन के मिशन को अमली शक्ल देने में एक अहम किरदार अदा करने वाले फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO सज्जाद मंजूर को जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर पाकिस्तान से टेलीफोन पर हमारे साथ। तो लीजिए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना मुश्ताक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना।
आप कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम हरदम रवायत जिंदगी के सुनने वालों के लिए अपने बहुत ही कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नईम ताहिर खेली साहब।
अस्सलाम वालेकुम।
बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम हरदम रवायत जिंदगी के सुनने वालों के लिए वक्त निकाला। और अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मंजूर साहब हमारे साथ हैं। हमें ऐसा मालूम होता है कि सज्जाद मंजूर साहब से हमारा रابطہ नहीं हो पाया, तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे रुखसाना फाउंडेशन की चेयरपर्सन रुखसाना मुश्ताक साहिबा आपसे। आपकी कहानी का कुछ हिस्सा हमने सुनाया अपने सुनने वालों को, आप ये बताइए कि आपको अपने इस ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और इस वक्त आपका ये ख्वाब ताबीर के किस मरहले पर है?
इब्तदा में था, आपको मैंने बताया है कि सिवाय परेशानी की मैंने कुछ भी नहीं देखा। इतने ज्यादा यहाँ पे परेशानी थी कि जिसका अंदाजा नहीं। बच्चों को खाना, बच्चों के जूते, बच्चों के कपड़े, उनके नहाने का पानी नहीं, उस लोकेलिटी के अंदर पानी था ही नहीं। और फिर उसके बाद जब उन्हें घर लाया जाता था, साफ किया जाता था, तो फिर उसके बाद उनके आपको पता है एंटी लाइफ शैम्पूज, उनके टूथ ब्रश, उनके सॉक्स, और फिर एवरी डे ये होता था कि वो चले जाते थे उसी गार्बेज के अंदर जूते उसकी बस खराब करके। और फिर उन्हें ये भी नहीं होता टीचर में या पागीले में नहीं रख दें तो एक हफ्ते के अंदर वो जूता खत्म कराते थे।
अच्छा।
इसी तरह कपड़ों का हाल था। और जी हाँ, तो जो मैं उनको कपड़े देती थी उसका ये था कि अगर कोट्स पहनाए हैं तो नाम भी नहीं था उनको आता, क्योंकि बेसिकली पश्तो और वो थे पर्शियन स्पीकिंग, तो उसमें ये हुआ करता था कि वो कोट को धो दिया करते थे और फिर वो के भरे हुए अगले दिन इतने महंगे कोट के वो पहन के फिर आ जाते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है 7-8 साल की मेहनत के बाद अब तो माशाल्लाह ऐसे है कि देख के तबीयत खुश हो जाती है। किसी के साथ हो बिठा दीजिएगा आपको लगेगा वैसे ही है माशाल्लाह। और जबान अब उनको अभी है उर्दू पे और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत जानते हैं और समझते तमाम हैं, तो माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है। और काम वगैरह भी बहुत अच्छा करते हैं, मगर क्योंकि उनकी फैमिली को जरूरत होती है तो अक्सर उनमें से स्कूल के बाद घर जाके तो डेफिनेटली खाने के बाद कोई ना कोई उठाते हैं, बॉटल्स हो गए, हो गए कागज हो गए, इनको कलेक्ट कर। तो ये सारे जो मेरे ख्वाब थे मेरे बेटे ने मुझे हेल्प की है और इतना किया कि मैं ना बता सकती हूँ ना मेरे पास वर्ड्स। और ये कि अल्लाह ताला बस उसकी उसकी जगह दे, उसने ऐसा किया कि जो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरी ड्रीम से कहीं बढ़।
आपने जब ये स्कूल शुरू किया तो अपने घर में ही ये स्कूल शुरू कर दिया था?
जी मैंने घर में मैंने मतलब इनकी मेजरमेंट ये थी 40 by 20, 40 by 36 by 18, इस तरह के 6 शेड बनाए, पीछे बैक शेड में, फ्रंट में, सब जगह। और बच्चों को वहाँ बिठा लिया, छोटे चेयर लगा के, और ये है कि पहले से पता है आपको घर के पीछे मैंने शेड बनाए उनमें, और बारिश होती थी तो हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं थी, होती छोटे छोटे चीज उठा के सब भागते थे, कभी कार पोस्ट में, कभी वरांडाज में, कभी दरख्तों के नीचे। अब माशाल्लाह स्कूल है, बिल्डिंग है, और चाहे ये रेंटेड है मगर ये बात है कि सारों और हमारे बच्चे उसमें कंफर्टेबली बैठते हैं और सारे काम वहाँ पे प्रॉपरली होते हैं। अब ये है कि अब तो माशाल्लाह कि बड़ी स्मूथ रनिंग है, मेरा काम बहुत कम हो गया है।
तो उनके वालदैन ने ज्यादा कोशिश तो नहीं की कि नहीं हम नहीं अपने बच्चों को भेजते, कैसे आपने उनको मनाया बच्चों?
बहुत ज्यादा बहुत रिजिस्टेंस, इस तरह के जो मेरे पास सिर्फ एक टीचर थी उसका दो दफा सर फटा।
हाँ?
और वो जो है जी दो दफा वो बात से स्विमिंग करते थे, पत्थर मारते थे, ये जो है ये आप किस लिए हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्यों ये कर रहे हैं। तो फिर ये वजह थी कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों में कन्विंस किया, मैं उनके घरों में जाती थी, वो जो झुग्गियां थी उनमें,
और आपके घर के बिल्कुल साथ ही ये कच्ची आबादी थी जो जिसके लिए आप
बिल्कुल।
अच्छा,
अब भी है। देखिए ऐसे है कि ये जो एरिया है इसके पीछे एक बाउंड्री वॉल है, इस साइड पे सारा पॉश इलाका है और फिर साथ इधर आर्मी के बैलून है, मगर पीछे उस वॉल के पीछे ये सारा स्लम एरिया था।
अच्छा, और अभी भी है ये एरिया स्लम एरिया
अफगानिस्तान? जी बिल्कुल बिल्कुल है।
अच्छा।
मगर इसका ये हुआ कि 2008 में इनको थोड़ी थोड़ी भी जमीन तीन तीन मरल लॉट कर दी गई। अब इसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने इसको सेल कर दिया पठानों के पास, तो उन लोगों ने वहाँ छोटे छोटे घर बना लिए। तो वो जो है सारा जो है इस वक्त, मगर स्टिल वहाँ पे ये बहुत सारी हैं झुग्गियाँ और बेंच लगे हुए जिनके अंदर ये लोग बैठे हैं।
अच्छा, तो बेहद शुक्रिया रुखसाना मुश्ताक साहिबा, आपसे गुफ्तगू जारी है लेकिन शामिल करेंगे हम अपनी इस गुफ्तगू में ओक्लाहोमा से डॉक्टर नईम ताहिर खैली को जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम ये सवाल पहले करेंगे कि ये बताइए कि वो कौन सा लम्हा था डॉक्टर नईम ताहिर खैली साहब जब आपने ये बड़ा फैसला किया कि आप हर सूरत अपनी अम्मी की ख्वाहिश को पूरा करेंगे।
यास्मी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक लम्हा होता है, ये तो सारी जिंदगी की आपकी तरबियत होती है ना। तो वो तो हमने देखा कि अम्मी और पापा सारी उम्र लोगों को हेल्प ही करते रहे। और ऑब्वियसली वाले साहब मेरे आर्मी में थे तो बहुत ज्यादा हमारे पास पैसे तो नहीं है, तो लेकिन जब फिर मैं डॉक्टर बना कार्डियोलॉजिस्ट बन गया तो फिर अल्लाह का शुक्र हुआ और स्टार्टेड हैविंग अ मेजर इनकम। तो उस वक्त हम सारे जो इधर पाकिस्तानी होते हैं अपने वालदैन की खिदमत करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो उनको हम कुछ कर सकें। तो मेरी वालदा को ज्यादा जो है ये इस चीज से खुशी होती है कि वो लोगों की हेल्प कर सके। तो इनको कोई बड़ा घर नहीं चाहिए था और कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए थी और बहुत सारा जेवर नहीं चाहिए था, इनको ये चाहिए था। तो मेरा तो कुछ नहीं, मैंने वही किया जो इनकी मर्जी थी। मेरे ख्याल में एक कोई लम्हा नहीं होता, जब मेरे पास होना शुरू हो गया तो हमने शुरू कर दिया।
अच्छा।
शुरू ये बेसिकली 10-15 साल हुआ था जब अर्थक्वेक आया था उधर कश्मीर में, तो वहाँ फिर हमने अम्मी और मैं कश्मीर में गए, वहाँ जाके हमने लोगों की हेल्प की और उनके काफी घर बनाए जो गिर चुके थे। तो फिर एक बात से दूसरी बात हो गई, फिर मैंने लाहौर में ये अपने घर में ही क्लिनिक बना लिया गरीब बच्चों के लिए और बंदों के लिए। तो फिर उसको काफी ज्यादा एक्सपेंड करके फिर आगे फिर अम्मी ने स्कूल का कहा तो वही घर में स्कूल बना दिया।
अच्छा, तो पहले आपका क्लिनिक बना और फिर अम्मी का स्कूल बना?
हाँ जी हाँ जी, वो अम्मी का ही क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक तो कोई नहीं, मैं तो अमेरिका में ही होता हूँ। वो अम्मी ये सब कुछ, लेकिन यह कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो उसका मुझे काफी समझ थी, तो वो हमने वो पहले वो क्रिएट किया। अब उसमें सिर्फ ये मजे की बात हो गई है कि वो बच्चे दिन को स्कूल में आते हैं और शाम को हमारा क्लिनिक होता है, तो उन्हीं वही बच्चे उन्हीं के बच्चों के रिश्तेदार और वालदैन फिर शाम को क्लिनिक पे भी आते हैं। तो वो एक बड़ी घरेलू सी बात हो गई है, उनको समझ आ गई है कि ये लोग कोई हमारे पर कोई चीज मसलत नहीं कर रही है, हमें हेल्प करने के लिए तो बैठे हुए हैं। ये जो लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते और ज्यादातर वो बहुत ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम है अपनी बच्चियों के साथ कि बच्ची तो स्कूल की तरफ जाए भी ना, तो वो फिर चूंकि अम्मी वहीं रहती हैं वहीं उन सारों से बात करते हैं, फिर ये शाम को क्लिनिक में आते हैं, तो वो देखते हैं कि ये बच्चों की बेहतरी के लिए। तो अब यह है कि वो अम्मी के घर के बाहर जिस वक्त आप जाए लाइन लगी होती हैं, वो बोल रहे होते हैं एक दाना हमारा भी रख लो। दाने का मतलब है कि एक बच्ची या बच्चा हमारा भी रख लो।
अच्छा।
और वो अब अनलिमिटेड फंड्स तो नहीं है, सो जितने हम रख सकते हैं उतने रखते हैं, लेकिन यह है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है।
अच्छा, तो और उस ऑन ग्राउंड आपके साथ मौजूद हैं सज्जाद मंजूर साहब जो सीईओ हैं और सब कुछ ज्यादातर यही उसको अंजाम देते हैं, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं लाहौर पाकिस्तान से। तो अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मंजूर साहब, मेरा ख्याल है कि उनसे फिर हमारा रابطہ मुनक़ता हो गया। तो चलिए आप ही से डॉक्टर नईम ताहिर खैली साहब, आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि इस वक्त इस स्कूल में क्या क्या कितने बच्चे हो चुके हैं और उन बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए क्या आप शराइत बदल चुकी हैं, शुरू में क्या थी और अब क्या इसमें तब्दीली आ चुकी है?
मैं जी उसको बेसिकली मैं ये आपको थॉट प्रोसेस या ये समझाने की कोशिश है कि ये जो है ये सारा जो है चैरिटी के लिए, लेकिन चैरिटी को समझने के लिए जो अम्मी ने और हमारे वालदैन ने और बड़ों ने समझाया है कि जब आप किसी को खैरात दे रहे होते हो तो वो खैरात आप उस शख्स को नहीं दे रहे होते, आप वो खुदा के लिए कर रहे होते हो। तो अगर आप खुदा को कुछ कर रहे हो तो वो इतना ही अच्छा होना चाहिए जितना आप अपने लिए करो, या आप उससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस के साथ हमने ये स्कूल शुरू किया है और स्लोली स्लोली, और इस वक्त अब हमारे पास 200 के करीब बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन है वो इस वक्त मैं काफी कॉन्फिडेंट से कह सकता हूँ कि वो किसी भी पाकिस्तानी स्कूल किसी अमेरिकन स्कूल के मुकाबले की है। तो हमारे पास जितनी क्लासेस हैं 8 क्लासेस हैं, हर एक के अंदर एक स्मार्ट बोर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक है, हम उधर फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, हर क्लास में आईपैड्स हैं, हमारे पास कुरान की क्लासेस होती हैं तो फिर साथ ही म्यूजिक की क्लासेस भी होती हैं, सारी जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है वो इंग्लिश में होती है ताकि ये बच्चे जो हैं इंग्लिश समझ सकें, क्योंकि एक तो देखिए हमारे जितने भी इधर पढ़े लिखे लोग हैं हमने आधी कौम को इंग्लिश सिखा दी है और आधी जो है वो उर्दू मीडियम में जाते हैं, और जैसे ही हम एक दूसरे से बात करने लग पड़ते हैं तो एक सेकंड में पता चल जाता है कि कौन गरीब तबके से है और कौन अमीर तबके से है, कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो माशाल्लाह ये उर्दू भी बोलते हैं, पश्तो भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, और फिर इधर कंप्यूटर क्लासेस हैं, सारे बच्चे टाइप करते हैं और रेगुलर कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, हर कमरे में लैपटॉप्स हैं। तो माशाल्लाह इस लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है कि ये अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मेरे साथ गई थी, एक PhD कर रही है साइकोलॉजी में और दूसरी जो है हाई स्कूल में सीनियर है। तो जो हाई स्कूल में सीनियर है वो कहती है डैड ये जो पढ़ाई इधर हो रही है ये हम लोगों को इधर ओक्लाहोमा में नहीं होती।
अच्छा।
तो उससे मुझे थोड़ा सा आंसू आ गया कि
माशाल्लाह। और ये सारा खर्चा जो काम की यानी जो आपकी तारीफ करने की काबिल बात है कि ये सारा का सारा सरमाया आप अपनी जाती इनकम में से लगाते हैं?
हाँ जी, मतलब अपनी ही चाहिए लेकिन
थोड़ा बहुत फंडिंग भी करते
हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, हमारे दोस्त जो चैरिटी का ये है कि वो घर से शुरू होती है, तो मैंने ये कुछ शुरू किया हुआ है, लेकिन जो भी मेरे दोस्त हैं जानने वाले हैं वो जब ये समझते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो उन्होंने कभी ज़कात देनी हो या कुछ करना हो तो वो आके मुझे दे देते हैं। सो ये कलेक्टिव एफर्ट है और इसमें किसी एक बंदे का काम नहीं है, तो जिस तरह पूरा मोहल्ला कहते हैं या पूरा खानदान कहते हैं वो उस तरह का काम है,
तो
लेकिन ज्यादातर तकरीबन मेरा ही है तो वो उसमें, लेकिन ये है कि वो बट एवरीबडी कंट्रीब्यूट।
और हमारे साथ इस वक्त सज्जाद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मंजूर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम,
बेहद शुक्रिया आपसे रابطہ मुनक़ता हो गया था। तो आप क्योंकि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, कुछ हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप क्योंकि इन बच्चों से के वालदैन से भी बराह रास्त इंटरेक्ट करते हैं, तो कब से आप वाबस्ता हुए इस फाउंडेशन के साथ?
जी मैं 2011 में इस फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हुआ था, और वो एक ऐसा पॉइंट था कि जब हम जो हार्ड वर्क था जो मैं कहूँगा वो हम कर चुके थे और हम एक ट्रांजिशन पोजीशन में थे, जिस तरह के आपको मैडम ने बताया, मैडम उसाना ने आपको बताया कि शुरू में क्या हालात थे, उसमें काफी हद तक उन पे काबू पाया जा चुका था और स्कूल की एक अच्छी सूरत निकल आई थी उस वक्त, और यानी हम आप ये समझ लीजिए कि उस रास्ते पे गामजन हो गए थे जो कि हमारा अल्टीमेट गोल था। तो उसके बाद 2013 में हम वहां से मूव किए और हम ये बाकायदा स्कूल की बिल्डिंग में आए यहाँ पर, जहाँ पे हमने सारा मल्टी मीडिया और ये सब कुछ इंस्टॉल किया, और उस वक्त फिर स्कूल में सीरियसली काम शुरू हुआ जो कि यानी हम एक सिलेबस हम लाए, सारा कुछ हमने उसने किया, टेक्नोलॉजी हमने उसके अंदर की और हमने टीचर्स हायर किए। पहले शुरू में तो हमारे पास इतने अच्छे टीचर नहीं थे, लेकिन बाद में फिर ये है कि हमने जो, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने बेस्ट अवेलेबल जो रिसोर्सेज थी वो प्रोवाइड करनी थी स्कूल में, तो हमने फिर टीचर्स हायर किए और अच्छे सैलरीज पे और अच्छे स्कूल से पढ़े हुए और वो वहां पे आए और हमने बकायदा इस चीज पर काम शुरू किया कि अब हमने जिस तरह से मैडम ने बताया कि और डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर्स के बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी बोलें और वो सारा कुछ उनका एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह उनका काम हो, तो फिर हमने इस बेसिस पर काम करना शुरू किया।
अच्छा, तो अब आप क्या महसूस करते हैं कि वो बच्चे जो कि एक रा हालत में आपके स्कूल में आए थे, अब उनमें क्या तब्दीली आ चुकी है? आपने खुद क्या देखा, उनके वालदैन के और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें आपने क्या तब्दीली देखी? जी सज्जाद मंजूर साहब,
बारे में बताऊं?
जी जी,
आपका मन कथा हो गए?
जी जी, रुसाना साहब आप बताइए।
ये है कि उनकी मदर अंडरस्टैंड करती है कि एजुकेशन क्या है। अब वो खुद आके, मतलब है कि दो दो घंटे रिक्वेस्ट करती है, मेरी मिन्नते करती है कि हमारे बच्चे दाखिल कर लो, जो मैं इतने कर नहीं सकती, रख नहीं सकती। बच्चे एब्सोल्युटली जो ट्रांसफॉर्म्ड है, थैंक यू, प्लीज एक्सक्यूज मी, आपको हेल्प करना, आपसे अच्छी तरह बात करना, ये उनका ऐसे है जैसे कि हर वक्त उनकी जबानों पे अल्फाज है, बालों के बने होते हैं, नहाते हैं वो, दांत साफ करते हैं, पॉलिश शूज होते हैं, कपड़े आयरन होते हैं और उनके कोट सब खराब नहीं होते। तो अब और फिर उनके बुक्स हमने घर में देते यही होती है, मगर जो होमवर्क के लिए दी जाती है स्टेशनरी कॉपी बुक्स वगैरह वो भी ऐसी सही हालत में आती है कि इंसान दंग रह जाते हैं। और आप सरप्राइज होंगे, शुरू में जब मैं इनको कॉपी बुक्स देती थी होमवर्क के लिए तो नेक्स्ट डे आया करते थे कि अब हमारे पास नहीं है, तो मैं बिछा के थी देखो तुम्हें मैंने कल इतनी एक्सपेंसिव 3 कॉपीज दी है वो किधर है? तो जवाब होता था हमने बेच दिए, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन था, मुश्किल जाके उसी वक्त वो उनको तोड़ के और दिया करके। तो मेरे लिए तो एक ये सबसे बड़ा जहाज था जिससे मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई कि वो जो बच्चे थे उन्हें ये बातें समझानी नामुमकिन थी कि ये लिखने के लिए मैं तुम्हें पेपर देती हूँ, इसके लिए नहीं देती हूँ। फिर अब अल्लाह का शुक्र अब उन्हें खुद पता कैसे बुक रखनी है, अब वो लाइब्रेरी की बुक्स ले जाते हैं, पढ़ के वापस लाते हैं। पहले तो जो चीज उनको मिली है कि बुक पढ़ो अगले दिन वो तो हमने बेच दी है, तो इतने मजे से कहते थे कि उससे गुस्सा भी नहीं था कि अभी साल में क्या कहे, इन्होंने तो अपने से अच्छा काम किया, क्योंकि 2 रुपए की बेच के आ गए, पर मेरी वो बुक 250-300 रुपए की होती थी। तो इस तरह वो मुश्किल वक्त था जो हमने गुजारा।
अच्छा।
बारिश में लेने के चेयर्स हम भाग रहे हैं, फिर एंटी लाइट शैम्पू इतना डिफिकल्ट था कि आप सोचें काबू में थे आते कहते थे हमें नहीं साफ कराना कुछ भी।
अच्छा।
तो मैं खुद, मतलब मैं खुद भीग जाती थी पकड़ते पकड़ते उन्हें संभालती, साथ मेरी एक मेड होती थी। तो हमने इतने सारे बच्चों को, और मेरी पहली फेवरेट स्कूल की जो थी, क्योंकि बाकी जो आपको बेटी ने बताया इस वक्त क्लिनिक, तो हमें डॉक्टर इजाजत नहीं थी जिसके अंदर आने की, तो जो क्लिनिक की चेयर्स होती थी वो हम सुबह के वक्त बाहर ले आते थे, उससे बच्चे बैठते थे। तो एक टेबल टेनिस थी, बड़ी सी टेबल थी, उससे छोटे होते बच्चे खेला करते थे, उस पर मेरे बच्चे खड़े होके काम करते थे। तो फिर जब मेरे बेटे ने आके देखा तो उससे थोड़ी सी हमें कहा कि अच्छा थोड़ा सा आप ही तो आप खुद ही कर रही हैं, चलिए माँ इसको थोड़ा इंक्रीज कर रही है। तो फिर उसको किया, मगर विद इन 3 ईयर्स ही रियलाइज थी ये तो बहुत ही बड़ा काम हो रहा है, क्लिनिक से कहीं ज्यादा। फिर उससे मुझे कहा कि नहीं मैं आपको फुली सपोर्ट करता हूँ, इसको आप आगे लेके चले। तो अब माशाल्लाह वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग कि जो हाँ ये काम हुआ है इसके लिए, तो इतने प्यारे बच्चे हैं और इतना दिल खुश होते हैं, इतनी इनोसेंट उनकी अब भी बातें हैं कि इंसान हैरान रह जाते कि ये आज की दुनिया में भी सिंपल लोग हैं। अभी जो बच्चे आपसे भी बात करेंगे, मैं आज सुबह उनसे पूछ रही थी कि देखो तुम कितने बहन भाई, तो एक की कोई 5 बहनें हैं और कोई 9 भाई हैं। और उससे कहा कि जो 2 बहनों की शादी हुई वो तो अफगानिस्तान होती, तो डिवाइडेड फैमिलीज हैं, कोई वहाँ है कोई यहाँ है, और फिर कभी कभी जब वहाँ कोई जाना पड़ता है, कोई डेथ हो गई है शादी, तो फिर एक ट्रक होते हैं जिसमें नीचे वो लोग सामान रखते हैं, ऊपर फिर बैठते हैं, ऊपर फिर उसकी एक तकरीबन वो छत सी बना दी जाती है, उल्टी चार पहिया रख के उनपे फिर लेडीज बैठेंगी, फिर एक और वो लगते पता नहीं उसके कितनी बिल्डिंग बन गई है उसके ऊपर स्टोरी, और उनमें बैठ के वो फिर जाते हैं वहाँ अफगानिस्तान तक, और मुझे नहीं पता वो बेचारे कैसे ट्रेवल करते हैं, तो ये उनकी जिंदगी है। मगर जब स्कूल आते हैं तो मास डिफरेंस, वो लगते ही नहीं कि वो लोग हैं। इसी तरह उन बच्चों की वजह से उनके घरों के अंदर वो चेंज आएंगे, उन्हें अब सफाई का पते सब्जी अलग रखेंगे, पता उसी छोटे से टेंट के अंदर बकरी भी होती है, और वो जो है उसका सारा वहाँ पे होते हैं, हर किस्म की चीज भी, घास भी और सब, तो अब वो सब अलग अलग उसी जगह के ऊपर सफाई करके अलग अलग से रख दिया गया, अपने जूते अलग होते हैं। तो यहाँ तक कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो एब्सेंट हुआ, मैंने पता किया कि भाई आज क्यों नहीं आया, तो पता चला उसकी छोटी बहन की डेथ हो गई है। तो मैं गई तो पता चला कि उस वो उसकी कॉटेज के अंदर है, वो जो हादसा था उसमें एक छोटी बच्ची 1.5 साल की, उसको सुलाया माने ने लाके और उसके ऊपर रजाई डाली, बड़ी भाभी आई उसे 4 रजाइयां रख दी और बच्ची सफोकेट कर दी, उन्होंने पुलिस में इतला दे दी, भागते फिर गुम गई है, और शाम को 6 बजे उसकी डेड बॉडी नीचे से निकल आई। तो इस तरह के वहाँ पे हालात हैं, मगर ये है कि अब दे आर गेटिंग बेटर, क्योंकि हम लोग सब जाते हैं ट्रेन करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत अच्छे से खुद भी चूंकि वो हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर्स को, स्कूल के स्टाफ को, हम सबको, तो उन लेडीज में भी बात डिफरेंस आए, उनके पहनने में, ओढ़ने में, उनकी हाइजीन में,
उनकी तब्दील हो गई। लेकिन रुखसाना साहब, आपने कभी ये कोशिश की कि उनको इस तरफ मायल किया जाए कि वो कुछ दूसरे हुनर भी सीखें बच्चे, ताकि वो इस पे जो कबाड़ इकट्ठा करने का काम है ये छोड़ दें?
देखिए वो हम लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, उनके लिए हम लोग स्टिचिंग सोइंग ये सब, मैंने हर किस्म का बंदा रखा, फिर उसके बाद मैंने एक ब्यूटिशियन रखी हुई है जो इस उम्र से उनको बाल बनाने, डिफरेंट स्टाइल, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, और फिर उनको मैनिक्योर, पेडिक्योर ये सब सिखाती है, और उन्हें हम ये बताते हैं कि अगर तुम ये काम करो तो तुम यहाँ से भी पैसे कमा सकते हो। मगर फिर वहाँ पे आ जाती है इनोसेंस इतनी जबरदस्त, एक दफा उसने बताया कि किस तरह बाल डाय करने, नेक्स्ट डे मेरे आधे स्कूल के जो बॉयज थे उनके आधे सिर गोल्डन हो गए, फिर वो ये काम करते हैं। अब माशाल्लाह बहुत समझ आ गई।
यास्मीन, मैं
डॉक्टर नईम ताहिर खेली, क्या ऐड करेंगे आप इसमें?
हाँ, जब आप इस तरह का काम करते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप फोर्स ही नहीं कर सकते। तो जब ये बच्चे शुरू हुए थे तो बहुत सारे बच्चों के अंदर जुएं, बहुत सारे बच्चों में स्केबीज होती है, बहुत सारे बच्चों की ये जो इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं, तो हमारा स्कूल जो है वो इसमें जो एक बात बाकायदा इनटेक करती है अम्मी, तो वो जो बच्चे आते हैं पहले वो जनाब उसकी बाल काटते हैं, नाखून कटे जाते हैं, वो साफ होते हैं, फिर वो डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद उनकी जो जिल्द की प्रॉब्लम, स्केबीज एक ऐसी चीज है जो बेसिकली जिल्द के ये बैक्टीरिया होते हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी अगर एक बंदे को हो गया तो पूरी फैमिली को हो जाता है जो भी उसको हाथ लगाए।
अच्छा।
तो अगर एक कमरे में 15 बंदे रहते हैं तो 15 के 15 को हो गया, सो फिर वो उनकी पूरी की पूरी फैमिली को हम डिसइंफेक्ट करते हैं, और वो क्लिनिक वहाँ फायदा आ जाता है, स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने रखा हुआ है इधर जो कि ये काम होता है। ये पूरा पहले 3-4 महीने का इनटेक ही होता है कि पहले प्लीज और थैंक यू और नाखून की सफाई और अपने सर का बाल काटने और ये सब चीजें समझने के बाद फिर वो स्कूल में आते हैं, बिकॉज ये तो आप समझे ना कि थोड़े से जंगली बच्चे हैं।
तो रा हालत में है और उनको आप अच्छा, लेकिन ये सवाल जरूर जहन में उठता है कि बहरहाल ये बच्चे जब वापस जाते हैं अपने घरों में तो कहीं एक इतना डिफरेंस जब तबकाती फर्क हो जाए कि जब स्कूल में आते हैं तो वो एक बिल्कुल अमीर बच्चे की तरह माहौल में रहते हैं, जब वो घर जाते हैं तो वो गुर्बत की इंतहाई तस्वीर होता है, तो क्या नफसियाती मसाइल उस बच्चे के लिए पैदा नहीं होते या उसके घर वालों के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए ना, हर कोई एक हद तक ही कुछ कर सकता है, जो भी कर सकता है. सो उसमें बेहतर तो ये होना कि हम उनके पूरे खानदान को भी सपोर्ट कर सकें, उनको हम नए घर भी बना के दे सकें, सारे बच्चों को भी. लेकिन वो मेरा ये ख्याल है कि हर बंदे को अपनी जितनी भी उसकी वो जितनी भी इस्तेतात है वो करे. तो होता ये है कि अब एक्चुअली हमने एक साइकाइट्रिस्ट रख रहे हैं जो एक्चुअली इन बच्चों को एनालाइज करे कि इनमें कौन कौन सी कमियां हैं और किस तरह हम उसको बेहतर कर सकते हैं. इस कदर मुश्किलात हैं इन बच्चों में कि हम सोच नहीं सकते. एक दफा मैं एक बच्चे से, मेरी बेटी, हम जब जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो बेटी बात कर रही थी, तो एक बच्चे से पूछा कि तुम बड़े होके क्या करोगे. और तो उसने कहा जी कि मैं जहाद करूंगा. कहा जी आप जहाद करोगे क्या करोगे. कहा जी मैं अपने पर बम लगाऊंगा और बम फाड़ूंगा. सो फिर उससे पूछा तुम जहाद किसके खिलाफ करोगे. उन्होंने कहा जी कि हम जहाद ईसाइयों के खिलाफ करेंगे. कहा अच्छा. तो एक जो टीचर थी हमारी वो ईसाई थी, मतलब शी इज अ क्रिश्चियन. तो उसने कहा बेटे अच्छा मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है. तो उसने कहा नहीं मैडम हम आपके साथ नहीं करेगा. अच्छा तो मेरे खावंद और बच्चों के बारे में क्या ख्याल है. नहीं हम उनको भी माफ कर देगा.
अच्छा तो इस तरह आप लोग उनकी थेरेपी करके और उनको कोशिश करते हैं कि
तो फिर इसी तरह वो शिया सुनी वाली बात के शिया जो है वो खुदा ना खास्ता काफिर है और हम उनको मारेंगे. सो वो बेसिकली वो हम ये टीच करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान होने का ये मतलब नहीं कि आपने हर एक को मारना और हर एक को काफिर कहना है.
जी रुखसाना साहब
आपको बताऊं कि इन बच्चों को फिर इनके जो घरों वाले कभी एग्री नहीं थे कर सकते. मैंने जाके रिक्वेस्ट की, मैं इनके घरों में गई, मैं कारी साहब के पास गई जो इमाम मस्जिद थे, और मैं इन सब को बसों में बिठा के लाहौर के 3-4 चर्चेस के अंदर लेके गई. अपनी जो क्रिश्चियन गर्ल्स थी उनकी शादियां की, वहां ये गए और आप मेरे पास वीडियोस हैं, इन्होंने वहां सिंग किया उनके लिए. और ये है कि ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए कि उसके बाद उन्होंने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि एज ह्यूमन बींग्स हमने एक दूसरे से मोहब्बत से रहने, प्यार से रहने और हम सबको मिल के रहने. तो ये नहीं हर जगह में लेके गए इनको, इसी तरीके से मस्जिदों में भी और वहां भी, और सबके साथ यही कहा है कि बेटा हम सब एक हैं, इंसान है तो एक हैं, आगे से ये डिवीजन बाद में पैदा हुई.
और आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा इंसान बनाएं, ऐसे अच्छे इंसान जो अपने लिए भी फायदा मंद हो, अपने और दूसरों अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी वो एक मुफीद और पोलाइट और महजब शहरी बनकर सामने आए.
सिटीजन अच्छे, मुसलमान अच्छे.
हाँ अच्छे मुसलमान.
उठे और सबको मार दिए और उठे और सब गलत काम के. नहीं तो अब आप ये इमेजिन करें कि इस माहौल से उठ के, जहाँ ये मेरा बेटा आपको बता रहे, यहाँ से उठ के फिर चर्चिस में जाना. तो मतलब देव अमेज, और वहाँ पे मैं उनके साथ सिंग करती रही और सब चीजें मौजूद है. ये मैं मैजिक ले रही हूँ, वो मौजूद है और उनके साथ मैंने खुद सिंग किया ताकि उन्हें पता चले ये ऐसी कोई बात है. मैंने कहा देखो जैसे वो आपकी शादियों पे आते हैं सब मिल के हम लोग बैठते हैं, इसी तरह अब उनकी शादी है तो हमने जाने. तो वो फिर
जी बेहद शुक्रिया डॉक्टर नईम ताहिर खेली साहब और रुखसाना मुश्ताक साहब. हमारी गुफ्तगू तो जारी रहेगी और हमारा रब्ता सज्जाद मंजूर से बार बार हो भी रहा है और कट भी रहा है, लेकिन पहले हमारी प्रोड्यूसर कह रही है कि एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो पहले एक ब्रेक और फिर हम बाकी गुफ्तगू करेंगे. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारा आज का मेहमान है लाहौर पाकिस्तान में कायम एक गैर सरकारी फलाही इदारा रुखसाना फाउंडेशन, जो लाहौर की एक कच्ची आबादी में मुकीम उन बच्चों के लिए मयारी तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है जो अपने गुर्बत ज़दा घरानों की आमदनी में चंद रुपयों का इजाफा करने के लिए कचरे के ढेरों से कबाड़ इकट्ठा करते हैं. हमने दावत दी है रुखसाना फाउंडेशन लाहौर की चेयरपर्सन और इस इदारे की रूहे रवां रुखसाना मुश्ताक और रुखसाना फाउंडेशन के सरपरस्त और यहां अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के एक कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट और रुखसाना मुश्ताक के इकलौते बेटे डॉक्टर नईम ताहिर खेली को, जो इस फाउंडेशन के जरिए अपनी वालदा के एक बहुत ही मुश्किल ख्वाब और एक बहुत ही मुनफरिद ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने में मसरूफ हैं। और वो ख्वाब है लाहौर पाकिस्तान के इलाके गुलबर्ग 3 में उनके घर के करीब वाके कच्ची आबादियों में मुकीम कचरे के ढेरों से कबाड़ इकट्ठा करने वाले बच्चों को उस मयार की तालीम मुफ्त फराहम करना जिस मयार की तालीम रईस घरानों के बच्चों को हासिल होती है। डॉक्टर नईम ताहिर खेली इस इदारे के लिए अपने जाती सरमाए का एक बड़ा हिस्सा सर्व करते हैं और अमेरिका में कायम अपने एक और इदारे रुखसाना ताहिर खेली फाउंडेशन की मदद से भी इस इदारे के लिए फंड इकट्ठे करते हैं। रुखसाना फाउंडेशन कचरे के ढेरों से कबाड़ इकट्ठा करने वाले इन बच्चों को मयारी और मुफ्त तालीम की फराहमी के साथ साथ उन्हें उनके घर वालों और उनके कम्युनिटी को सेहत की सहूलतें भी मुफ्त फराहम करती है। जबकि वो गरीब और नादार बच्चियों की शादियों का बंदोबस्त भी करती है और पाकिस्तान में आने वाली किसी भी कुदरती आफत के दौरान मुतासरीन के लिए हर मुमकिन तरीके से मदद करती है। और हमने दावत दी है रुखसाना फाउंडेशन लाहौर के CEO सज्जाद मंजूर को जो इदारे के तमाम कामों को अमली तौर पर अंजाम देने में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahainzindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameel.voaurdu। जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में ये थी झलक। लाहौर पाकिस्तान की एक कच्ची आबादी में कायम या उसके करीब कायम एक ऐसे स्कूल की जो काम कर रहा है रुखसाना फाउंडेशन के तहत जो कबाड़ इकट्ठा करने वाले बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश में मसरूफ हैं और इसके रूह रवां रुखसाना मुश्ताक और उनके बेटे डॉक्टर नईम ताहिर खेली जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं आज हमारे मेहमान हैं और इस वक्त टेलीफोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नईम ताहिर खेली साहब, जब हमने आपकी तस्वीरें और आपकी बायो और आपके फाउंडेशन के बारे में पोस्ट किया इस प्रोग्राम के फेसबुक पेज पर तो बहुत से लोगों ने आपको बहुत सराहा और वो बहुत खुश हुए कि एक यूनिक प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया जिसका कोई तस्वुर भी पाकिस्तान में तो कम से कम आइंदा भी मुश्किल नजर आता है कि कोई इस बारे में सोचे भी, लेकिन आप लोगों ने न सिर्फ सोचा बल्कि उस पर उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लाकर लोगों के सामने पेश कर दिया। तो हमारे एक प्रोग्राम में लॉस एंजलिस के एक वो है बहुत हमारे मेहमान अक्सर रहते हैं परवेज लोधी साहब जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के फाउंडर हैं ओनर हैं और पाकिस्तान में भी उनकी एक कंपनी है टेक्नोलॉजी की, उन्होंने आपके लिए एक ऑफर पेश की है और जो मैंने आपको पहले भी रेफर की थी मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर आप चाहें तो वो 2016 में आपके स्कूल के बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले और बेहतरीन प्रोग्रेस करने वाले और बेहतरीन हाजिरी वाले तालिब इल्मों को सोलर बिजली से चार्ज होने वाली उनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी हुई सोलर लालटेनों का तोहफा देने के लिए तैयार हैं।
उनका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आपको मजे की ये बात बताऊं कि मेरे जो यहाँ पार्टनर हैं, जो इसमें जिसे हम पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं, वो माइकल विंटर्स हैं, जो लॉस एंजलिस एजुकेशन बोर्ड में है, स्कूल वहां पढ़ाते हैं और उनकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वाटर सॉल्यूशंस ऑफ अमेरिका। तो वो वाटर सॉल्यूशंस फॉर लाइफ, वो तकरीबन पिछले 5-6 साल से हर साल 1 या 2 दफा मेरे साथ जाते हैं पाकिस्तान, और ये स्कूल में महीनों तक रहते हैं और इसको वो हेल्प कर रहे हैं इस लिहाज से कि ये बिल्कुल अमेरिकन स्टैंडर्ड पे हो जाए। हम तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 या 4 क्लासेस अमेरिका से डायरेक्ट लेते हैं। हमारे पास वो वेब एक्स है जिसमें हम ये डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू हम वो क्लासेस बच्चों की करते हैं। तो लॉस एंजल्स का प्रवेश लोधी साहब बोल रहे हैं, तो मैंने कहा वो हमारा बड़ा क्लोज उधर माइकल विंटर साहब भी हमारा काफी हेल्प करते हैं।
अच्छा,
मुझे भी ये ख्याल आया था कि इसमें ये जो आप कर रही हैं वो ये एक सदका जारी है, क्योंकि अगर इस चीज को सुन के कोई और इस तरह की चीज करता है या किसी और तरह की करता है तो वो हेल्प होती है लोगों की। तो वो जैसे कहते हैं कि अच्छा काम करें तो उसकी थोड़ी उसको बताने से बुरा नहीं होता, उससे बेहतर होता है,
बेहतर होता है
सुनने के बाद।
बल्कि परवेज लोधी साहब ने एक पैगाम दिया यूएसएड और यूएनडीपी पाकिस्तान के मुतल्लिका हुकाम को भी कि वो रुखसाना मुश्ताक के इस मिशन को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें और इस स्कूल को पूरे पाकिस्तान की सतह पर फैलाने में मदद करें और फंड फराहम करें। तो हमने ये पैगाम पहुंचाया परवेज लोधी साहब का यूएसएड और यूएनडीपी पाकिस्तान के मुतल्लिका हुकाम तक, और शुक्रिया अदा करते हैं परवेज लोधी साहब का हमारी और हमारे आज के मेहमानों की हौसला अफजाई करने का और ये ऑफर करने का, जिसे यकीनन आप लोग कबूल करेंगे। और हम तवक्को करेंगे कि आपके इस मिशन में हमारे सुनने वाले भी अपना हिस्सा डालेंगे, और इस सिलसिले में हम आपकी वेबसाइट का लिंक अपने फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर देंगे और जो भी आपसे बराह रास्त रब्ता करना चाहेगा उन्हें आपसे रब्ता करने में मदद करेंगे। तो अब हमारे साथ सज्जाद मंजूर साहब फिर मौजूद हैं, अगर हमारा उनसे रब्ता मुनक़ता नहीं हो गया। सज्जाद मंजूर साहब
जी, जी जी,
आप ये बताइए कि प्रैक्टिकल मसाइल का पेश आ रहे हैं, इस ख्वाब को अमली शक्ल देते हुए इस वक्त क्या मसाइल हैं जो आप चाहेंगे कि दूर होने चाहिए या आपकी कोई मदद करे?
देखिए, इसमें मसाइल से ज्यादा चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो तो बात ये थी, जो जब हमने सारी टेक्नोलॉजी आई उसको इम्प्लीमेंट करने का था और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके तो इस्तेमाल करने का, क्योंकि वो सबके लिए नहीं थी, हमारे लिए भी नहीं थी और सारे हमारे जो स्टाफ है उसके लिए नहीं थी। तो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है और उसको अब ये है कि मेंटेन करना और सारा हिसाब से उसको चलाना, ये बेसिकली हमारे जो हैं ये चैलेंजेस हैं, और हम उसको वो अभी तक तो हम उससे वो उस पर काम कर रहे हैं। और मैं कुछ खास आपको ये चीज इसमें नहीं बता सकता कि क्या इसमें हमें, यानी ये कोई ऐसे कोई मेरी भरपूर ऐसे कोई मसाइल नहीं है। बस जो सबसे ज्यादा जो बात हमारे सामने की जाती है वो यही की जाती है कि ये स्कूल अभी तक हम इस स्कूल को 5th तक हम चला रहे हैं, हमारी जो है हमारी 5वीं जमात तक हम इस क्लास स्कूल को जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये स्कूल 10वीं तक जाए, क्योंकि हम एक बहुत यूनिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जो कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं है। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन जितनी हमारे यहाँ है किसी और स्कूल में नहीं है। तो जब एक रूटीन में एक बच्चा ये तालीम हासिल करता है तो फिर उसकी एजुकेशन की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है और सबसे बड़ा हमारा जो मसला है वो यही है कि हम आगे कंटिन्यूएशन का हमारा क्या होगा,
क्योंकि वो जो बच्चे आपके स्कूल से जा रहे हैं पढ़कर उनको वो तो 5वीं के बाद आजकल अब तक जो बच्चे गए हैं उनके लिए क्या हालात हैं?
उसमें ये है कि बात ये है कि हम बच्चे जब हमारे स्कूल से जाते हैं तो उनको ऑलरेडी 8 साल की एजुकेशन वो हमारे साथ ले चुके होते हैं, जो कि नर्सरी में हमारे साथ आते हैं। उससे यह है कि उनकी बेस बन जाती है और वो ये पॉसिबिलिटी, और हमारा कोई सिलेबस इतना मुख्तलिफ नहीं है बाकी स्कूलों से, ये है कि हमारा ज्यादा रिफाइंड फॉर्म ऑफ सिलेबस है। लेकिन फिर भी जो जाहिर है जो एक कंटिन्यूएशन हम कर सकते हैं वो कोई और स्कूल तो प्रोवाइड नहीं करेगा उसे, क्योंकि जाहिर है हम उन बेसिस पर ही उसको आगे लेकर जाएंगे। तो बाकी ये है कि क्योंकि हमने हमारा जो एम्फेसिस है वो ये है कि हम बच्चे को सोचना सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं कि वो रीजनिंग कर सके वो, और उसके दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर उसको ये टेक्नोलॉजी या ऐसी चीजें आगे नहीं मिलेंगी तो वो शायद कामयाब नहीं हो सकेगा, या वो उन पे इतना डिपेंडेंट है कि शायद वो कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी ये बेहतर होगा कि वो इसी इन्वायरमेंट में अपनी अच्छी एजुकेशन आगे लेके जाए, ताकि एक स्टैंडर्ड जो है वो तो डेफिनेटली हमने एक मेंटेन किया हुआ है, तो वो अगर कायम रहेगा तो जाहिर है उसमें उसका ज्यादा फायदा होगा।
और आप दूसरे इदारों से भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके इस मिशन में शामिल हों और इस स्कूल को आगे बढ़ाने में मदद करें, कुछ ऐसा किया आप लोगों ने?
जी, हमारी कोऑर्डिनेशन हमारी होती है, खासतौर पर रोटरी इंटरनेशनल के साथ हमारी बहुत बड़ी काफी हमारी कोऑर्डिनेशन होती है। अभी रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट को रोटरी की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर शोकेस भी किया गया है, और उसमें यह है कि आजकल हम ट्रेनिंग के लिहाज से, स्टाफ ट्रेनिंग और स्टाफ डेवलपमेंट के लिहाज से रोटरी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो इस तरह की एवेन्यूज देख रहे हैं कि किस तरह से ये मदद की जा सकती है और किस तरह से बच्चों की एजुकेशन की कंटिन्यूएशन के लिए काम किया जा सकता है।
तो इस वक्त हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं और यकीनन उनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, तो अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे और वो चाहे कि आपके इस मिशन में शामिल हो जाए, तो आप उनसे इस वक्त क्या कहेंगे? डॉक्टर नईम ताहिर खैली साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर दीजिए। डॉक्टर नईम ताहिर खैली साहब,
सजाद कह रहे थे कि वो उधर लाहौर में हमारे पास वी हैव कोलैबोरेशन विद 2-3-4 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जो कि फिर अम्मी उनसे कांटेक्ट करती हैं जो हमारे पांचवी ग्रेड के बच्चे होते हैं, तो वो फिर उनको अली इंस्टीट्यूट है और एक और स्कूल है जिस पर जाके फिर हम अरेंज करते हैं कि बच्चे वहां कंटिन्यू करें स्कूल पे। अनफॉर्चुनेटली हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चियां 10-12 साल की भी होती हैं, 13 साल की, तो उनके माँ बाप उनको खींच के ले जाते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। तो अभी वो उससे बड़ी थोड़ी सी कबाहत रहती है, लेकिन यह है कि अभी तक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हम उनके अरेंजमेंट करते हैं कि वो आके किसी स्कूल में चले जाएं और हम वहां से उनकी कोलैबोरेशन कर दें। बाकी यह है कि जी, ये मैंने तो कहा ना, ये सबका जारी है, जो भी चाहे वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर इसमें नहीं इन्वॉल्व होता तो खुद करें, जैसे भी कर सकते हैं, अपने घर के इर्द गिर्द, अपने बहन भाइयों के, वालदैन के, अपने नेबर्स का, जो भी
यानी जिस सतह पर भी जो
हमारे साथ, तो जितना ये जी आपने अपना वेबसाइट हमारी दे दी हुई है, तो anybody wants to contact us, we are more than happy to coordinate with them and welcome any input and जो भी वो हमारी मदद करना चाहें वो
शामिल हो सकते हैं आपके इस मिशन में, जो एक बिल्कुल यूनिक मिशन आपने शुरू किया है, एक रा हालत से ऐसे बच्चों को जिनको क्या कहना चाहिए कि तहजीब वगैरह उस सतह की नहीं हासिल होती जैसा कि दूसरे घरानों के, दूसरे क्लास के बच्चों को हासिल हो सकती है, और उनको आप इतना सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं कि वो एक तरह से तो अपने उस माशरे से, अपने उस तहजीब से, अपने उस घराने से दूर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक बड़े माशरे में एडजस्ट होने के काबिल और बेहतरीन इंसान बनने के काबिल हो जाते हैं। तो लेकिन आपका जो इदारा है, फाउंडेशन आपकी, रुखसाना फाउंडेशन, ये तो दूसरे फलाही काम भी कर रही है, कुछ उन पर भी रोशनी डालिए।
हाँ जी, वो इस तरह जी कि ये हमारा जो मेन फोकस है, बेसिकली जो डेली वर्किंग है वो तो ये स्कूल और क्लिनिक है। जो क्लिनिक है वो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, माशाल्लाह उसमें 5 डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, OBGYN, पीडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने आपको बताया इस इलाके में सारे लोग एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं, तो जल्द की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहीं हमारी लेबोरेटरी भी है, उसके अंदर फ्री लैब टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं और सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। तो एक ये तो दो मेन फोकस कंटिन्यूसली हर रोज चलते हैं। उसके अलावा जो भी ये नेचुरल कलेमिटीज होती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो टाइमली फैशन में हम कोशिश करते हैं कि हेल्प करें। अभी जो ये शुरू हुआ था 2005 के अर्थक्वेक से, तो फिर हम कश्मीर में चले गए थे और वहां जाके घर बनाए लोगों को, वैसे जो हेल्प कर सकते थे।
आपने जिक्र किया था कि आपने तमाम सूबों में 50-50 स्कूल मकानात बनवाए थे।
वो 2010 में जब फ्लड आए थे ना, तो वो तो पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट किया था। तो उस वक्त हमने और हमारे जो कुछ अमेरिका में दोस्त हैं जो और डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, उन सारों ने ये प्लेज किया था कि हम सारे मिलके सारे सूबों में जाके कुछ घर वापस जितने जिन लोगों के गिर गए हैं वो बनाएं। तो वो फिर हमने ये चारों सूबों में 50-50 घर वही घर आप उनको क्या कह सकते हैं, दो दो कमरे डेढ़ कमरा बनाए, और उसमें भी मतलब काफी मुश्किल होती है। वो ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन लोग हैं, किस तरह करेंगे, फिर उनको सामान दिलवाना, पैसे देना, ये करना, वो करना, काफी ज्यादा। फिर उस वक्त फिर बहुत सारे ट्रक्स भेजे इन सारे डिफरेंट एरियाज में, कंबलों के और कपड़ों के। फिर सदन पंजाब में काफी ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई थी, तो ये जो लोग हैं वो अपनी फसल दे लिव फ्रॉम वन क्रॉप टू दी अदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक उनकी फसल जब तैयार होती है तो उसमें से जो पैसे आते हैं उसको लेके फिर वो दूसरी फसल तैयार करते। अब उनकी खड़ी खड़ी फसलें तबाह हो गई थी, तो अब वो दूसरी फसल जनरेट ही नहीं कर सकते थे, तो फिर उधर जाके उनके लिए जो ये सीड्स होते हैं वो कलेक्ट किए, उनको दिए, फर्टिलाइजर दिया, ट्यूब वो बिजली के पैसे चाहिए ट्यूबवेल्स के लिए, वो अरेंज किए। तो ये फिर अब लेटेस्ट ये जो इधर अर्थक्वेक हुआ है जो स्वात में और शांगला में, तो अम्मी को तो मैं बस कहता हूँ कि वो कोई स्पेशली पर्सन है। वो अभी उधर 14 घंटे की ड्राइव करके उधर गई हुई थी, कोई 2-3 दफा जा चुकी हैं मलाला यूसुफ़ज़ई के इलाके में, और बल्कि उनके घर रह के आई हैं। तो वो वहाँ जाके हम वहाँ कोई 25-30 घर बना रहे हैं वापस, और जिनके लोगों के गिर गए हैं। और फिर ये अम्मी गई हुई थी कुछ सामान लेके बच्चों के लिए उधर, और लोगों के लिए कंबल वगैरह। ये आप उन्हीं से बात कीजिए, उनसे पूछिए वो क्या कर रही हैं।
तो लेकिन उनसे पहले वो हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, अरशद उनका नाम है, जो इसी स्कूल का तालिब इल्म है, वो भी हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। जी अरशद, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम अरशद, आपका पूरा नाम क्या है?
अरशद, नाम अरशद खान है।
हाँ अरशद, आप बताइए कि जब आप कौन सी क्लास में है?
क्लास में।
अच्छा, तो बताइए कि स्कूल में आप जब से आए हैं आप अपने आप को कितना बेहतर महसूस करते हैं?
बहुत अच्छा बेहतर महसूस करता हूँ। टीचर अच्छी अच्छी बातें बताते कि किसी से अच्छे कपड़े, और टीचर बताती है किसी का बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए।
तो घर में जाकर आपको अच्छा लगता है? घर जब इतने अच्छे स्कूल से वापस घर जाते हैं तो जाहिर है आपका घर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का स्कूल है, तो क्या फील करते हैं, आपका क्या दिल चाहता है?
मेरा दिल चाहता है कि और बच्चे भी स्कूल में पढ़े, ये बहुत अच्छा स्कूल। और भी भाई स्कूल में पढ़ते, ये बहुत अच्छा स्कूल है।
और आप आजकल भी ये जो कबाड़ है वो इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं? क्या आपने छोड़ दिया?
यस।
अच्छा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि आप कब तक ये काम जारी रखेंगे? अगर आप पढ़ गए तो फिर क्या बनेंगे इसको छोड़कर?
डॉक्टर बनूंगा।
चलिए जी, डॉक्टर नईम ताहिर खेली साहब, आपका एक और जो क्या कहना चाहिए कंपटीशन में आएगा। अरशद साहब आपके कंपटीशन में आएंगे। बहुत शुक्रिया अरशद। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आप कितने अरसे से ट्रेन कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत ही हम हरदम रवायत जिंदगी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, डॉक्टर नईम ताहिर खेली साहब और रुखसाना साहिबा। गुफ्तगु को समेटते हुए हम आपसे ये पूछेंगे कि अब आइंदा आप क्या करना चाहेंगे, या कुछ ऐसे ख्वाब जो अभी भी अधूरे रह गए हैं? रुखसाना साहिबा से हमारा रابطہ कर गया।
हाँ जी, तो वो अब ये मैं आपके लिसनर्स को थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि अम्मी ने आपको बताया कि ये घर, ये जो स्कूल शुरू हुआ था वो हमारा जो छोटा सा घर है उसके ग्राउंड में हमने शेड लगा दिए, और अब ये एक बड़े घर में चला गया। ये सारा डिपेंडेंट है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है या प्रैक्टिस बढ़ती है उस लिहाज से ज्यादा फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, और दोस्त अहबाब जो है हमारे साथ इंक्लूड होते हैं। तो वो ये सदका जारी है, जितना मेरे तो ईमान यही है कि जितना मैं इसमें ज्यादा पैसा खर्च करता हूँ उतना ही अल्लाह ताला और ज्यादा मुझे दे देता है।
तो और आपने यहाँ पर भी अमेरिका में भी एक रुखसाना ताहिर खेली फाउंडेशन कायम की, तो वो इससे रिलेटेड है या वो अलग काम कर रही थी?
तो वो ये है ना जी कि वो यहाँ हम लोकल भी काफी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ लोकली भी जरूरत होती है। यहाँ भी बहुत सारे होमलेस लोग हैं। मैं जहाँ ओकलाहोमा में रहता हूँ वहाँ यहाँ टोर्नेडोज वगैरह आते हैं तो उसकी जरा हेल्प करते हैं। फिर यहाँ हमारी मस्जिद वगैरह है तो उनको हम सपोर्ट करते हैं मेनली। تو بٹ یہ جو ہے یہ جو رخسانہ طاہر خلیل فاؤنڈیشن ہے یہ وہ یہاں کی لوکل بیسڈ ہے بٹ یہ پھر آلسو یہ بھی اسی کے تھرو پھر ہم سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستانی فاؤنڈیشن ہے پھر ادھر ادھر سے پیسے ادھر وائر کرتے ہیں وہ جو ہے اس کو سپورٹ ہوتی ہے تو اب امید یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے ایک بڑی بلڈنگ لینے دیں اور اس کو یہ کرنے دیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اب اتنے زیادہ پیسے خرچ نہ کرو کہ کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ دو.
اچھا پھر ماں ہے نا, یہی میں سوال کرنے والی تھی رخسانہ صاحبہ آپ سے کہ آپ کو کبھی کبھی یہ تو نہیں ہوتا کہ کیا میں نے اپنے بچے کو کر دیا, اس کا سارا پیسہ لگائے جا رہی ہوں دوسروں پر, تو اس کے اپنے لیے اور اس کے اپنے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟
جی آپ کے سامنے اب میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ اب میں معافی مانگتی ہوں, اب اتنا ہی رہنے دے, اس سے آگے نہیں جائے, کیونکہ اب میرا دل دھڑکتا ہے کہ اس کو کچھ اپنے بچوں کا تھوڑا سا چھوڑنے, اس لیے کہ چائے ٹائم بہت اس نے ہمارے لیے کیا, اپنے بچوں کے لیے کیا, مسلمان اور پاکستانی بچوں کے لیے کیا. اب یہ ہے کرے سے جتنا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, مگر اس سے آگے اب اللہ اس کی مدد کرے, اس کو تھوڑا سا اپنے بچوں کا بھی سوچیے,
سوچنا چاہیے اور یقیناً سوچنا چاہیے, لیکن اللہ ان کے لیے پتہ نہیں اور کیا کچھ سوچ رہا ہے. اور
مجھے یہی کہتے ہیں کہ ماں آپ نے ساری عمر 50 years تو مجھے یہ بتایا, اب اس سال میں آ کے آپ مجھے یہ کہتے ہیں. میں کہتی ہوں بیٹا اب میں کمزور ہو گئی ہوں, اب میری ہمت نہیں ہے اور یہ میں ایگزاسٹ ہو گئی ہوں, تو میں یہ اب ڈرتی ہوں کہ اس کی معاشرہ اتنا ہر مہینے کا خرچہ ہے, یعنی بجلی کے ہمارے جو خرچے ہوتے ہیں, کیونکہ اسکول میں سارا وقت, شام کو کلینک میں, پھر جو گیسٹ ہاؤس ہے اس میں, تو وہی ہمارے اتنے ہو جاتے ہیں بلز کے, جس کا اندازہ
بالکل. اور ہر بچے پر
بہت زیادہ
بے حد شکریہ. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑے جذبے کی بات ہے, اور دل کے ڈاکٹر ہیں, دل سے کام کرتے ہیں, اپنی ماں کا دل خوش کر رہے ہیں, تو یقیناً ان کا دل بھی اللہ میاں خوش کرے گا. ہمارے آج کے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا,
آپ کا بہت شکریہ. ہم بے نام اور نامعلوم لوگوں کو آج اتنا اونچا اٹھا دیا اور سب کے ساتھ یہ بات کر دی, ورنہ میرا تو یہ ہے کہ میں تو اپنا اسکول کا بورڈ بھی
بہت شکریہ.
میں بہت شائع ہوں.
پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا, اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارا آج کا مہمان تھا لاہور پاکستان میں قائم ایک غیر سرکاری فلاحی ادارہ رخسانہ فاؤنڈیشن, جو لاہور کی ایک کچی آبادی میں ان بچوں کو معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات مفت فراہم کر رہی ہے جو اپنے غربت زدہ گھرانوں کی آمدنی میں چند روپوں کا اضافہ کرنے کے لیے کچرے کے ڈھیروں سے کباڑ اکٹھا کرتے ہیں. ہم نے دعوت دی تھی یہاں امریکی ریاست اوکلاہوما کے ایک کامیاب کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کو, جو رخسانہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اور سرپرست ہیں اور جو اپنی والدہ کے ایک بہت ہی مشکل خواب اور ایک بہت ہی منفرد خواہش کو حقیقی شکل دینے میں مصروف ہیں. اور وہ خواب ہے لاہور پاکستان کے علاقے گلبرگ 3 میں ان کے گھر کے قریب واقع کچی آبادیوں میں مقیم کچرے کے ڈھیروں سے کباڑ اکٹھا کرنے والے بچوں کو اس معیار کی تعلیم مفت فراہم کرنا جس معیار کی تعلیم رئیس گھرانوں کے بچوں کو حاصل ہوتی ہے. ڈاکٹر نعیم طاہر اس ادارے کے لیے اپنے ذاتی سرمایہ کا ایک بڑا حصہ صرف کرتے ہیں, اور امریکہ میں قائم اپنے ایک اور ادارے رخسانہ طاہر خیلی فاؤنڈیشن کی مدد سے بھی اس ادارے کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں. رخسانہ فاؤنڈیشن ان بچوں کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں اور ان کے گھر والوں اور ان کی کمیونٹی کو صحت کی سہولتیں بھی مفت فراہم کرتی ہے, جبکہ وہ غریب اور نادار بچیوں کی شادیوں کا بندوبست بھی کرتی ہے, اور پاکستان میں آنے والی کسی بھی قدرتی آفت کے دوران متاثرین کے لیے ہر ممکن طریقے سے مدد فراہم کرتی ہے. رخسانہ فاؤنڈیشن کچرے کے ڈھیروں سے کباڑ اکٹھا کرنے والے بچوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا جو منفرد اور مشکل مشن شروع کر چکی ہے, اس مشن کو اور ان بچوں کی تعلیم کو پرائمری سے آگے تک اسی معیار کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی ابھی صرف اپنے ذاتی سرمایہ سے اور کچھ دوستوں کی مدد سے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر دنیا بھر میں جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ اس نیک مشن میں شامل ہو کر ان بچوں کو کسی تعلیم کی ایک مخصوص منزل تک پہنچانے میں ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے ذریعے، جس کا لنک ہم اس پروگرام کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دیں گے۔ ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu اور انہی پیجز پر آپ ہمارا یہ پروگرام سن بھی سکیں گے اور ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں گے جن کے لنکس ہم ان پیجز پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔